आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल के समयसार गाथा 23, 24, 25 एवं कलश 23 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समयसाराय गौरवूचा चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान्तरम।
आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे ऐसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया, उसकी गाथा नंबर 23 से 25 तक की चल रही है। पेज नंबर है 57, इसके ऊपर है दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता दिखाई देता है, और द्रव्यत्व जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। क्योंकि खारेपन और द्रव्यत्व का एक साथ रहने में अविरोध है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, किंतु अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हुआ देखने में नहीं आता। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। देखो, दो उदाहरणों के द्वारा ये बात सिद्ध की है उन्होंने। कौन से हैं दो उदाहरण? एक प्रकाश और अंधकार, और एक नमक और पानी। ये दो उदाहरण है, और सिद्ध क्या किया है कि आत्मा और शरीर आदि परद्रव्य कभी एक नहीं हो सकते। दो उदाहरण है, तो एक उदाहरण अन्वय को बताता है और दूसरा उदाहरण व्यतिरेक को बताता है। एक अन्वयी उदाहरण है और दूसरा व्यतिरेकी उदाहरण है। ये अन्वयी व्यतिरेकी क्या होता है बता नहीं जी, तो आप पंडित बन रहे हैं ना, सेठ से तो समझने पड़ेंगे ना सब। तो क्या कहते हैं, प्रकाश और अंधकार। जहां प्रकाश होगा तो अंधकार किसी कीमत पर नहीं होगा, तो एक परस्पर विरोध का उदाहरण है। और खारापन नमक और पानी ये अविरोध का उदाहरण है। बंबई के समुद्र में पानी है ना, वो जम के नमक हो जाता है, और वो नमक बरसात में पड़ा रहे तो पानी हो जाता है। तो कहते हैं कि खारापन नमक में भी है और पानी में भी है, तो भले ही कितना ही परिवर्तन हुआ हो, लेकिन दोनों नमक ही हैं। क्योंकि प्रवाहीपन और खारेपन में कोई विरोध नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, जब वो पानी हो गया नमक, तो फिर वो खारा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नमक नहीं रहा, पानी भोले पानी हो गया। तो कहते प्रवाही हुआ है, उससे खारेपन का कोई डर है क्या? ठोस वस्तु ही खारी रहेगी, ऐसा तो नहीं है। ये तो वितरे की उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पानी और नमक के खारेपन का कोई विरोध नहीं है, वैसे ही परद्रव्य और आत्मा में कोई विरोध नहीं हो सो बात नहीं है। तो वहां तो विरोध नहीं है, ये सिद्ध किया, और यहां सिद्ध करना है क्या विरोध है, इसलिए वो वितरे की है। तो अन्वयी कौन है कि जैसे प्रकाश और अंधकार में एक साथ रहने में विरोध है, वैसा ही विरोध पर द्रव्य और आत्मा का एक होने में विरोध है। दो बातें कही कि आत्मा और परद्रव्य की स्थिति प्रवाहीपन और खारेपन जैसी नहीं है कि जिन्हें एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रकाश और अंधकार जैसी है कि जिन्हें एक साथ रहने में विरोध है। इसलिए आत्मा और परद्रव्य शरीरादि ये कभी भी एक नहीं हो सकते, ये निष्कर्ष है। ये बहुत स्थूल बात है, सब मुमुक्षुओं को अच्छी तरह ख्याल में है, लेकिन इसके बाद क्या कहना जाता है देखो कि इसलिए प्रसन्न हो जाओ। देखो पढ़ो संस्कृत में, संस्कृत वाला प्रसिद्ध है ना, तत् सर्वथा प्रसिद्ध, ये वही प्रसिद्ध है प्रसिद्ध पूजन में आता है, जिसे आप लोगों ने प्रसिद्ध बना दिया है। प्रसिद्ध विशुद्ध बोलते क्या नहीं, वो है प्रसिद्ध। संस्कृत में देखो पांचवी लाइन में अंतिम लाइन में अमृत भाई तत् सर्वथा प्रसिद्ध, अब अच्छी तरह प्रसन्न हो जाओ। विबुद्धस्व, अच्छी तरह समझ लो, क्या समझ लो कि स्वद्रव्यम ममेदम, कि स्वद्रव्य ही मैं हूं, मेरा है, इति अनुभव, ऐसा अनुभव करो। तीन आदेश दिए हैं, ये भी लोट लकार हैं, प्रसिद्ध, विबुद्धस्व और अनुभव। ये अनुभव है ना, ये अनुभव वाला अनुभव नहीं है, कौन सा अनुभव वाला अनुभव नहीं है, ये बोलते अनुभव माने क्रिया होते ना, अनुभव करो, ये तो जो कर्ता कर्म क्रिया होती है ना, ये अनुभव, अनुभव तू समझे ना, अनुभवताम, अनुभवंतु, अनुभव समझे ना, मध्यम पुरुष का एक वचन है, नहीं आया समझ में, पढ़ा था कभी का नहीं, भवति भवता भवंती है ना, तो ये जो ये तो वर्तमान लट लकार के रूप है, लोट लकार जो आज्ञावाची होता है उसका होता है भवतु भवताम भवंतु, भव भवताम समझे ना, तो ये भव अनुभव माने ऐसा अनुभव करो, ये आज्ञा है इसमें, अनुभव में अनुभव करो, करो और शामिल है इस अनुभव में, नहीं है क्यों, समझ में आया कि नहीं है, भाई समझ में आया क्या है बताओ, होने से इसका अर्थ क्या है, हाँ, अनुभव करो, इतना करो भी इसमें शामिल है, यदि दूसरी जगह अनुभव आएगा तो करो अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन इस अनुभव में अनुभव करो इतना शामिल है बसंत भाई, ये व्याकरण से निकलता है, ये अनुभव है नहीं, ये आज्ञा है, इति अनुभव, तुम वहां जाओ ऐसा अनुभव करो, जाओ के लिए क्या कहते हैं, गच्छ, बोलते कि नहीं बोलते, गच्छ जाओ, आगच्छ आओ, भव हो, अनुभव अनुभव करो, समझे ना, प्रसिद्धस्व प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध खुश हो जाओ, विबुद्धस्व माने जानो समझ लो अच्छी तरह से, तीन बातें कही, खुश हो जाओ, समझ लो और अनुभव, क्या अनुभव करोगे, ये मेरे नहीं, तीन आदेश निकाले, क्या खुश हो जाए, कह दिया प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे कहने से प्रसन्न हो जाएंगे, पहले तो सुना दी गालियां, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, इसी में लिखा कि नहीं लिखा? पहले पैरा में, इस पैरा को छोड़कर तो पहले पैरा है ना, बीच में है ना। वारिया जी देखो, पेज नंबर 55 पर, 56 पर नीचे से 6वीं 8वीं लाइन लिखा ना, हे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, मिला के नहीं? अभी 6 लाइन नहीं गुजरी है, तब तो हमें दुरात्मन और आत्मघात करने वाले कहा था, अब कहते खुश हो जाओ। इससे खुश होंगे या नाराज होंगे? क्या बोला? एक ही टीका में दो पैरे हैं। एक पैरे में कहते हैं दुरात्मन, प्रिंसिपल साहब, आत्मपंसन, आत्मपंसन जानते हो ना, अपने को ठगने वाले। अपने को ठगने वाले मैंने क्या, क्यों? गांधी जी एक गांव में गए थे तो उन्हें रात माचिस की जरूरत थी, चार मार बनानी होगी, बरसात हो रही थी, कहीं कोई दुकान का नाम निशान दिखाई नहीं देता था। ऐसे में एक आदमी थोड़ा सा सामान 150 रुपए का रखे और एक लालटेन जला करके वहां बैठा था, ऐसी छतरी लगा के। तो इन्हें कभी माचिस है कि हाँ है, तो कितने की है? एक आना की, उस जमाने की बात है, एक आना माने चार पैसे, चार पैसे माने पुराने चार पैसे, मिलती थी एक पैसे में माचिस, कितने में मिलती थी? अब उसने कहा चार पैसे, तो गांधी जी ने चार पैसे दिए, आत्मकथा में लिखा उनने, और माचिस ले ली और वहां से चले। तो वो बोले कैसे कैसे बेवकूफ आते हैं, एक पैसे के चार पैसे दे गए। क्या? तो गांधी जी लौट के गए, सुन लिया हमने भैया, एक पैसा का चार पैसा देने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या? लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि तू मुझे मूर्ख समझता है। अरे मैंने तो ये सोच के ऐसी जगह में यहाँ बैठा है बेचारे को, क्या कौन यहाँ ग्राहक आता है? सुबह तक एक रुपए का भी माल नहीं बिकेगा, दो चार आने का बिकेगा, तो उसमें यदि एक पैसे की माचिस एक पैसे में दो पैसे में बेचेगा तो क्या खाएगा? इसलिए एक आना कोई अनुचित नहीं है, क्यों? और ऐसे आदमी को जो रात के 2 बजे एक किनारे, सड़क के किनारे बरसात में छतरी लगाकर 10-5 रुपए का सामान रखकर अपनी आजीविका के लिए बैठना पड़ता है, तो उसकी सहायता करने का भाव भी मन में था। वैसे भीख देने के बजाय काम के बहाने दे दो, माल के बहाने दे दो, क्यों? इस भावना से दिया था। क्या हम माचिस कभी जिंदगी में खरीदी नहीं है? क्या हमें माचिस का भाव भी पता नहीं होगा? क्यों? एक पैसे में मिलती है, लेकिन हमको इसका दुख नहीं है कि एक पैसे के चार पैसे क्यों लगे, दुख इसका है कि तू साथ में मूर्ख भी। यहां कहते हैं कि यहां तो कहते हैं हे दुरात्मन, हे आत्मघाती, आत्मा का हत्या करने वाला, तो आत्मघाती माने क्या? ये जो जहर पी करके आत्महत्या करते हैं इसका नाम आत्मघात नहीं है। टोटमल जी सामने लगा ना, निरंतर शुद्धोपयोग प्रियवन का घात करे है ताकि खबर ही नहीं, बस बाह्य जीवों की हिंसा को ही हिंसा मानता है और अपना घात करे। कौन सा घात करे? शुद्धोपयोग रूप प्राणन का घात करे है, मिथ्यात्व के माध्यम से, कसाय के माध्यम से निरंतर 24 घंटा अपने हम आत्मा की हत्या कर रहे, यही आत्मघात है। वैसे तो आत्मा अमर ही है, इस शरीर के वियोग के नाम का यहाँ मरण नहीं है। काय का है कि जो आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है उसे शरीर आदि वाला मानना, इसका नाम यहाँ आत्मघात है। क्रोध करना भी आत्मघात नहीं है प्रोफेसर साहब, मान भी आत्मघात नहीं है, क्योंकि प्रकरण तो मान्यता का चल रहा है ना, शरीर में एकत्व बुद्धि का। हे दुरात्मन माने कि आत्मा से दूर हो गए मनुष्य, क्या आत्मा जिसके आसपास भी नहीं फटकता है, आत्मा की बात जिसे सुहाती भी नहीं है, कान में पहुंच जाए तो अंदर में प्रवेश करती नहीं है, उसका नाम है दुरात्मन। और निरंतर देहादि को आत्मा मानता है और आत्मा को जानता ही नहीं है, इसका नाम है आत्मपंसन, आत्मघाती, अपने को ठगना। कि भाई साहब तू अपने को ठग रहा है, क्या कि अपने को ठग रहा है माने क्या, तू समझता है कि मैंने गांधी जी को ठग लिया है, तूने ठगा तो अपने को है कि वो कुछ नहीं जानता ये समझ लिया, तो मैंने एक के चार ले लिए, समझ में है ना। ऐसे आत्म को अपने को ठगने वाले माने क्या, कोई कि दूसरे को हम ठग ले, दो रुपए की चीज 10 रुपए में दे दी, हम खुश होते क्या, नहीं क्यों सब, तो उसको क्या ठगा, अपने को ठगा है, क्योंकि पाप तो तूने बांधा है, उसे क्या समझता 10 रुपए में मिलती होगी, उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पूछता भी नहीं है, होते ना जी बड़े लोग होते हैं, विदेशी लोग आते हैं तो रिक्शे वाले को 100 का नोट दे देते हैं, क्या $3 तो हुए, वहां इतनी दूर जाते तो $25 लग जाते, एक दफा उसने 100 रुपया दे दिए, 100 का नोट दे दिया, उसने कहा बाबू जी बाकी के पैसा रखो रखो रखो, तो दूसरी दफा 100 रुपया वहां क्या लगेगा, 100 रुपया ले लेना, तो वो समझता है कि मैंने उसे ठग लिया, अरे तू तो 25 रुपया कहता तो भी वो 100 देने वाला था, तूने तो 25 के 100 बोलकर अपने को ठगा कि उसे ठगा, बोलो। अब है ना आपपंसन माने पर को अपना माना तो अपने को ठगा, क्योंकि पर तो अपना हुआ ही नहीं, पर अपना हो जाता तो ये माना जाता कि हमने पर को ठग लिया। वास्तव में विचार करो गहराई से तो कोई किसी को ठग सकता है, क्यों नहीं ठग सकता, इसलिए नहीं ठग सकता कि उसके पास जो संपत्ति रहनी है तो जब तक उसके पुण्य का उदय है उसके पास से जा ही नहीं सकती। नर्मदा जैसा जोड़े का काम है, नर्मदा मोती होते थे ना पहले, वो दर्शन कथा वाली थी ना, कौन क्या नाम था उसका, मनोरमा, मनोरमा नहीं था कुछ और था, मनोवती, एक ही अर्थ है, मन जिसमें रम जाए वो मनोरमा, क्यों जो मन वाली हो वो मनोवती, समझे ना। तो उसके पास दो मोती थे, एक नर और मादा ऐसा कहलाता ना, तो उसमें क्या नियम है कि वो नर मोती अपने पति को देती और राजा को भेंट करने जाओ तो भेंट करके आए राजा। अभी कहे इस मोती का जोड़ का मोती मेरे को मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कीमत होती ना आजकल जोड़ की, बहुत कीमत होती है, एक हीरा हो तो उसकी कीमत मान लो 1 लाख रुपए कैरेट है, और उसी का जोड़ का मिल जाए तो 1.5 लाख रुपए कैरेट में वही हीरा बिक जाता है, उसकी कीमत कैसे बढ़ गई, जोड़ होने से बढ़ जाती है, क्योंकि उसको दोनों कानों में पहनना है, अब इसके एक कान का है क्या काम का, क्यों? तो राजा बोले कि मेरे पास इसका जोड़ है, मैं लाऊंगा साहब, कि जरूर लाना, तुम जो मांगोगे वो दूंगा। तो बोलो नर नाम के मोती को खजांची को दिया और तिजोरी में रख दिया, दर्शन कथा में लिखा है। रात को वो नर नाम का मोती वापस जाके उसके पास पहुंच गया, समझे ना। तो दूसरे दिन वो लेके आया फिर कि महाराज उसकी जोड़ का ये है। कहा ठीक है, अब हो गया, खजांची लाओ वो कल का, और दोनों को मिला के देखते हैं कैसा बढ़िया लगेंगे। जाके साहब वो तो चोरी हो गया, गया कहा। तुम बहुत असावधान हो। अरे आज तो हमने देखा है रोजाना, मैं मालूम कितना माल चोरी होता होगा, कौन देखता है, क्या करें। अब एक का एक रह गया कि साहब आप नाराज मत हो, इसकी जोड़ का मेरे पास एक और है। बोला तो चल दूंगा, कि ठीक है। रात को फिर वही पहुंच गया, वहीं का वहीं रंगलाल जी। फिर दूसरे दिन लाए, अब लाओ वो कल का। क्या हुआ, निकाल लो फांसी पर चढ़ा दो, कल को दी आज सिर्फ सावधानी कि महाराज इसे फांसी पर नहीं चढ़ाओ, ये ऐसा ही है, ये इसके पास रुक नहीं सकता है, ये नर मोती है, मेरे पास इसका मादा मोती है, मैं वो आपको लाके दूंगा तब जे आपके पास रहेगा दोनों, जब तक ये नहीं रहेगा तब तक रहेगा ही नहीं, इसका कोई अपराध नहीं है। एक बात तो इसमें कितनी रहस्य की है अहमद भाई, कि वो मादा मोती दे देते पहले जाके राजा को तो क्या होता, मर जाता जी। बोलो बोलो ऋषभ क्या होता। तो वो नर मोती अपने पास रखा था तो राजा की तिजोरी में चला जाता, दो उधर हो जाते, ठीक है ना। क्या मतलब होगा इसका, भाग दौड़ तो नर ही करता है मादा के पीछे, मादा नर के पीछे नहीं भागती है। क्या स्वरूप में है ना, शास्त्र की बात है कि नहीं, दर्शन कथा में तो जब दो मोती है तुम्हारे पास, कौन कौन से दो मोती, एक तो जो बाहर की संपत्ति और दूसरे वो पुण्य का उदय जिसकी वजह से वो है, पन्नलाजी साहब दो है। तो जब तक वो पुण्य का उदय हमारे पास है, वो नर मोती, वो संपत्ति तुम कितनी कहीं को दे देना, वो रात बाप नहीं बसेगी, वो लौट के पुण्य के उदय से तेरे पास आ जाएगी। जैसे चक्रवर्ती भरत के पल्ले में पुण्य था कि नहीं था, तो बाहुबली पर चक्र चला दिया, फेंक दिया, जा बाहुबली की आज्ञा में रहना, तो बाहुबली की प्रतिज्ञा देके लौट के वापस हाथ में आ गया। अरे तुम्हारा पुण्य की पकड़ है तो कितना ही उलीचना, वो तुम्हारे पास आए बिना रहेगा नहीं, और जिस दिन पुण्य की पकड़ ढीली हो जाएगी तो कितना ही छाती से चिपका के रखना, उसे बिखरते देर लगे नहीं, काया और माया को बिगड़ते देर नहीं लगती है। आकाश में जो बादल है, बिजली है, जैसे है इनका स्वरूप, काया का स्वरूप बिजली के समान और माया का स्वरूप बादलों के समान, जैसे चमकती है बिजली और गई, ऐसे बादल आए और बिखर जाते हैं, बरस जाते हैं, ये इनका स्वरूप है। ऐसा स्वरूप तो यह आत्मपंसन, क्या कि तू अपने को ठगता है, जगत को ठगकर, अरे तेरे पुण्य का उदय होगा तो सही रास्ते से आएगी, तू गलत रास्ते अपना कर मुफ्त में पाप बांध लिया है। ये तो कर्म शास्त्र का बहुत महान सिद्धांत है कि डाकुओं को भी डाके में सफलता बिना पुण्य के उदय के नहीं मिलती है। पूजन करना नियुक्ति जानकारों से श्याम कुमार जी क्या क्या प्रूफ है इसका कि शास्त्र में लगा हम शास्त्र मास नहीं मानते। कोई बात नहीं है कि यदि एक कारण नहीं है तो एक दफे उसे सफलता मिलती है और एक दफे असफलता मिलती है, इसका कारण क्या? पुरुषार्थ तो बराबर है, हथियार बराबर है, सब बात में बराबर है, क्यों पुरुषार्थ भी बराबर किया? ऐसे व्यापार में है एक दफे सफलता मिलती है और एक दफे असफलता मिलती है, इसमें कारण क्या बोलो? जब पुण्य साथ देता है तो सफलता मिलती है, जब पुण्य साथ नहीं देता है तो सफलता नहीं मिलती है, है ना? फूलचंद दादा बैठे हैं, इनके एक चाचा जी थे, उनका नाम था मोतीलाल जी दाऊ, आप लोग भी जानते हैं, मेरे मौसिया जी थे। तब वो बहुत प्रभावशाली थे, समाज के प्रेसिडेंट, तो बहुत प्रभाव। तो पंडित जी मैंने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा एक दफे ऐसा बाजार का उल्टा उल्टा लगा कि सारी जिंदगी की कमाई साफ हो गई। फिर पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कहा दाऊ एक बात बताओ, सब दाऊ कहते थे उनको, सारा गांव, एक गांव के सारा गांव, और सब बाद में सारा देश दाऊ कहने लग गया था कि दाऊ एक बात बताओ, किससे मुझे बहुत सुनाते थे सबको ही पंडित जी, जब मैं अपने गाँव खनिया ढाने के हैं जो मूल में, खनिया ढाने के बाद भी एक गांव है मोहासा वहां के, कि जब मैं वहां था 18 वर्ष का जब आया था अशोकनगर में, तो मेरे पास एक पैसे की पूंजी नहीं थी, किसी की जान पहचान नहीं थी, कोई दो पैसे का उधार देता नहीं था। फिर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्यों बाबूला जी साहब आपने भी सुने तो होंगे किससे उनके, दो घंटा को रेल में उनके साथ बैठ जाओ तो सुन लो, ये किया ये किया ये किया, फिर इतना कमाया, आज आपकी कृपा से लाखों रुपया बाजार में, आज हम कोई पूछता नहीं है कि कब पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा दाऊ तुमने कमाए हैं? हाँ मैंने कमाए हैं। तो जब तुम 18 वर्ष के थे तुम्हें कोई अनुभव नहीं था, पूंजी के नाम पर एक पैसा नहीं था और बाजार में पहचान नहीं थी, उसने तो लाखों कमाए, और जब ये 60 वर्ष का अनुभवी हो गया और उनकी ये धाक थी कि दाऊ बाजार में जब डाक बोलने खड़े होते थे ना, अनाज गल्ले के व्यापारी थे, तो 2 रुपया भाव बढ़ जाता था, दूर से देखकर कि दाऊ आए हैं तो 2 रुपया मार्केट बढ़ जाता था, क्योंकि किसी दूसरे को लेने ही नहीं देंगे वो, रोजाना हजारों बोरियां खरीदना, इतना अनुभवी था, और कोई मार्केट में इतनी इज्जत, कोई पूछा ही नहीं कि पेमेंट कब होगा, और लाखों करोड़ों की पूंजी इतने होशियार दाऊ ने गमा कैसे दिए, ये तो बताओ मुझे क्यों, ये बताओ आप मुझे कि पंडित जी ये तो आप ही बताओ। तो ये है कि जब तक पुण्य का उदय था तो दिन रात दूने बरसता गया, और तुम समझते रहे कि मैंने कमाया, और हालत ये हो गई कि मैं तोड़ा और बाजार सकड़ा, और उन्होंने कहा अब पाठ सिखाना चाहिए। हिंदू धर्म में एक फिलोसफी है कि भगवान अपने भगत के 1,00,000 नखरे बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके अभिमान को बर्दाश्त नहीं करता है। जैन धर्म में तो ऐसी कोई फिलोसफी है नहीं, इसलिए जब उसके भगत को अभिमान होने लगता है तो थोड़ा सा एक झटका वो दे देता है, क्यों है सिद्धांत थोड़ा पढ़ना काल के लिए, कि वो भगवान जरा भगत को रास्ते पर लाने के लिए, कि तू ये मत समझ के तेरे किया हुआ है, ये तो सब मेरे इशारे पर हो रहा है, और मेरा इशारा जरा ऐसा होएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, अपने यहां ऐसा तो कोई भगवान है नहीं, अपने यहां कर्म नाम का भगवान है, क्यों विचार करना भाई गंभीरता से। कहने पंडित जी आप सच्ची कहते हो। मैंने कहा झटका लगने के बाद तो पंडित जी की सब सच्ची मानते हैं, कल्याण उसका होगा कि बिना झटका लिए समझ में आ जाए तो उसे झटका लगेगा ही नहीं। क्यों? तो भगवान को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। चल रहा ना मालिक जी। तो इसलिए उन्होंने कहा क्या, आत्म पंसन अपने को ठग, ए जगत दूसरे को नहीं, सदा अपने को ही ठगता है और ठगाया जाता है। क्यों? कि जो अनुकूलता बिना खोटा काम किए ही मिलने थी मिल सकती है, पुण्य का उदय है ना, तो मिलने ही वाली है। खोटा काम करके मुफ्त में पाप और बांध लिया। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है ना, वकील था वो पहले राष्ट्रपति बनने के पहले, और उसके पहले मजदूर था, और उसके पहले जब पढ़ने के लिए गया था तो एक किताब खरीदनी थी, किताब 100 मील दूर मिलती थी, तो किताब के पैसा तो थे लेकिन टिकट के लिए पैसा नहीं थे पादनी जी। तो 5 दिन में 100 मील चल करके वो किताब लेने गए थे। सेठ जी मैं एक सलाह दूं आपको, बिना पैसे की एक केस तो मैं आपका पैसा दे के भी नहीं लूंगा, लेकिन आप दूसरा वकील कर लोगे, लेकिन एक सलाह मैं मुफ्त में देना चाहता हूं यदि आपको लेना हो तो। कि दोनों क्या देना है कि एक केस इतना कमजोर है कि इसमें माथा मार के और तुम यदि सफल भी हो गए तो जो उपलब्ध करोगे उतना माथा मार के तुम चौगुना न्याय से ही कमा सकते हो। क्या देवीलाल जी, जितनी शक्ति इसमें लगाओगे ना, मिलेगा कि जीतोगे कि नहीं जीतोगे वो तो वो वकील बताएगा जिसे तुम करोगे, मैं तो लेने वाला नहीं हूं क्योंकि इसमें कुछ दम है नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम इसमें इतने नीचे आ जाओगे और उसके बाद जो उपलब्ध होगा ये मुकदमा लड़ते लड़ते जो दीवार है ना ये सोने की बन जाएगी, है ना। अब 100 साल से लड़ रहे ना मक्सी पारसनाथ का, 2 मंदिर स्वर्ण मंदिर बन जाते अमृतसर जैसे, इतना पैसा दिगंबर और सीताम्बरों का खर्च हो गया है और परिणाम क्या निकला, भगवान ताले में बैठे हैं और 8 वर्ष से उनका अभिषेक भी नहीं हुआ है। सिरपुर की बात बोला, सिरपुर की बात, अयोध्या की कहना था, अयोध्या की कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जितना झगड़े में खर्चा हो रहा है उतने में सोने की मस्जिद और सोने का मंदिर बन सकता है ऐसा कि सारी दुनिया देखने आए और एक आदमी नहीं मरे, और दोनों ही अयोध्या में बन सकते हैं और दोनों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी हो सकती है यदि में किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुए। तो इस तरह के वो कहते हैं ये हम अपने को ही धोखा देते हैं, इसलिए उन्होंने इसे आत्मपंसन कहा। लेकिन ये कहने के बाद फिर कहते हैं पृथ्वी समझ में आ गया हो तो शांत हो जाओ, विविध्वस्त समझो और क्या करो, परद्रव्यम ममेदम न इति अनुभव, कि परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरा तो मेरा आत्मा ही है ऐसा अनुभव करो। टीका की समाप्ति यहां की, एक पैरे में एक, दूसरे पैरे में एक। अब उसके ऊपर कलश, जब कलश चढ़ाया कितना बढ़िया, पढ़ो आई कथम अपि मृत्वा तत्, मेरा गला काम नहीं करता, बोलो बोलो आप लोग छंद बोलने में, क्या कहते आई कथम अपि मृत्वा, ये आई अत्यंत कोमल संबंध संबोधन है, क्योंकि वो प्रसिद्ध के बाद आया ना, विविध्वस्व के बाद आया ना, है ममेदम इति अनुभव के बाद आया ना। अब कहते आई कथमपि मृत्वा, कैसे भी करके मर करके भी एक काम कर लेना,
कि मर करके भी कि हाँ कि क्या है ऐसा बड़ा काम, क्या आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव को मरना पड़ेगा क्या, मर के करना पड़ेगा क्या? आपने अच्छा बता दिया, हम तो इसी भ्रम में करने वाले थे। देवीलाल जी क्यों मर करके अगले भ्रम में होएगा क्या? अरे मरना नहीं पड़ेगा, आत्मा के अनुभव में तो अनंत आनंद की वर्षा होगी। तो तुमने मरकर क्यों कहा कि हमने तो ये कहा कि इतनी कीमती है कि मौत की कीमत पर भी यदि ये मिलती हो तो भी सस्ती है, उसकी महिमा बताने के लिए कहा। घबराना नहीं, मरने मरने का कोई काम, तकलीफ का ही काम नहीं है तो मरने का काम कहां से आएगा? कतमपि कैसे भी करके मृत्वा मर करके भी तत्व को तू हलीसन, इस भगवान आत्मा रूपी जो तत्व है उसका कौतूहली बन जा। कौतूहल माने मजाक नहीं, कौतूहल किसे कहते हैं जानते हैं आपको है? अपन यहां दीवार हो और वहां उस तरफ दीवार के उधर कुछ कुछ आवाजें आ रही हो, कभी हंसने की, कभी खेलने की, कभी रोने की, तो आपको ये जिज्ञासा जगती है ना कि क्या है, तो आप जरा उचक उचक के, दीवार से दिखता तो है नहीं, एक पत्थर पर खड़े होके और ऐसे झांक के देखते हो ना, तो उसको बोलते हैं कौतूहल। कि क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या मतलब तुम्हें दूसरे घर में देखने में? कुछ नहीं, ऐसे ही कौतूहल है। मन ऐसा अंदर में, मतलब कोई वहां बड़ी चीज नहीं है, उससे मेरी कोई सिद्धि होने वाली हो ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही अंदर में कौतूहल जग गया कि देखूं तो क्या है, देखूं तो क्या है। तो ऐसे एक दफे भले आदमी ये तत्व का कौतूहल ही करके देख ले कि भगवान आत्मा है ये लोग कहते हैं, तो देखूं तो है कि नहीं है क्या? रोटी सुनने मता, लेकिन सड़क पे से गुजरे यहां बहुत भीड़ है और कुछ आत्मा फात्मा हो रहा है, चलो चलो देखे क्या है, अभी तो आध घंटा का समय है वहां जाने में, तब तक देख लेते हैं। ऐसे बोलते हैं वे क्यों आ गए, वैसे ही आ गए, वहां जा रहे थे, ये देखा तो आ गए, क्यों ऐसी कौतूहल में आ गए। अरे एक दफे भगवान आत्मा का को कौतूहल में ही देख ले, तत्व का कौतूहल ही तो बन। क्या कर कि अनुभव, अनुभव कर माने आत्मा का अनुभव करने की बात यह नहीं है, अनुभव माने ये भी अनुभव करो, ये भी वो अनुभव नहीं है, ये भी अज्ञात लोट लकार है। इसका अर्थ क्या है अनुभव माने? अनुभव माने अनुभव नहीं, अनुभव माने अनुभव करो। क्या अनुभव करें? तो कहते हैं कि भव मूर्ते मुहूर्तम पार्श्ववर्ती अनुभव। क्या कहते हैं भाई साहब? ये भव मूर्ते माने इस शरीर क्या है, ये संसार की साक्षात मूर्ति है, ये मंदिर में जो भगवान की मूर्ति विराजमान है ना, तो क्या है कि श्री मंदिर परमात्मा की मूर्ति है, तो ये क्या है, ये संसार की मूर्ति है। शरीर को क्या कहा? भव मूर्ति। सोनला जी ये अपना शरीर क्या है? भव माने संसार, संसार माने चार गति और 84 लाख योनियां। इसकी पूजा करने से चार गति और 84 लाख योनियों में भ्रमणा पड़ेगा, पूजा करने से माने इसका सम्मान करने से। ये साक्षात भव की मूर्ति है, जैसे बोलते पाप मूर्ति, ये पुण्य मूर्ति, बोलते कि नहीं बोलते, ये दुख मूर्ति। ऐसा ये शरीर क्या है? ये संसार दुखों का स्टेचू है। इस भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम अनुभव, दो घड़ी के लिए इसका पड़ोसी बनकर देख, इसे पड़ोसी के रूप में अनुभव कर। क्या मतलब? अभी तक तूने इसे घर वाले के रूप में अनुभव किया है, अब तू दो घड़ी के लिए इसका पड़ोसी बन जा। बहुत मरम है इसमें। पड़ोसी बन जा माने क्या? पड़ोसी किसे कहते हैं? सुमन भाई हमारे मकान के बगल में रहे, उसी का नाम पड़ोसी नहीं है? देखो यहाँ शरीर को तुम्हारे आत्मा का पड़ोसी कहा जा रहा है, जबकि आत्मा का आकाश के दोनों एक ही प्रदेशों में रहते हैं। ऐसा भी पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी का मतलब क्या? लोग कहते देखो भैया किसी से लड़ाई कर लेना, लेकिन पड़ोसी से लड़ाई नहीं करना। बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? कि 24 घंटा बगल में शत्रु को सुलाओगे तो तुम्हें नींद आएगी? एक तो शत्रु बनाना ही अच्छा नहीं है, और बनाना तो दूर का बनाना, पड़ोसी को नहीं बनाना। और पड़ोसी माने घर के ही बगल वाला थोड़ी होता है। क्यों? अपना पाकिस्तान पड़ोसी है कि नहीं है? क्यों? और राजस्थान का मध्य प्रदेश भी पड़ोसी है। क्यों? और जयपुर का अजमेर पड़ोसी है, और बापूनगर का गांधीनगर पड़ोसी है। क्यों? अपना खादी भवन अपना पड़ोसी है, और इस शरीर का पड़ोसी आत्मा है, आत्मा का पड़ोसी। कितने प्रकार के पड़ोसी हो गए? तो पड़ोसी का धर्म क्या होता है? जो कहते पड़ोसी बनकर देख, इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं तो बताता हूं जरा। देखो क्योंकि जब पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो बुझाना क्या नहीं बुझाना, पड़ोसी का स्वरूप बताने की कोशिश कर रहा हूं। बुझाना क्या नहीं बुझाना? भगत राम जी, भगत राम जी कहते जरूर बुझाना। क्यों? इसलिए कि परोपकार करना है। नहीं नहीं, इसलिए भी कि नहीं बुझाओगे तो थोड़ी देर बाद अपने घर में आग लगेगी। दिखता तो परोपकार है, लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि मेरे घर में आग न लग जाए, इसलिए पड़ोसी के घर की आग बुझाओ। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, हमारा अपमान क्यों करते हो? हमने तो बराबर पड़ोसी का धर्म निभाया है, इसलिए बुझाई है आग। ठीक है ठीक है। तो मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूं कि अपने पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सामने 25 कदम दूर सामने की रो में एक मकान हो और उसमें आग लग जाए तो पहले किसकी आग बुझाना? बोलो साहब। मनोहर लाल जी कहा, यदि तुमने परोपकार की भावना से ही आग बुझाई है तो पड़ोसी की पहले क्यों? पहले उसकी क्यों नहीं, सामने वाले की? क्योंकि सामने वाले की आग से हमारा मकान जलने वाला नहीं है, पड़ोसी वाले की आग से हमारा मकान जलेगा। इसलिए हमने पहले पड़ोसी की बधाई तो कोरा परोपकार नहीं है, उसमें कुछ सोपकार भी है, स्वार्थ भी है कि नहीं? कोई खोटी बात नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सुनिए, तो पड़ोसी के में आग लगे तो जरूर बुझाना, लेकिन पड़ोसी के मकान में और अपने मकान में एक साथ आग लगे तो पहले किसकी बुझाना? बोलो सुनील भाई। गणेश साहब, परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, पहले पड़ोसी की बुझाना। क्या नहीं साहब, कहीं होगा दूसरी देशों में, हमारे देश में नहीं है। फिर तो अपना बुझाना के नहीं, तो इसी का नाम है पड़ोसी धर्म। क्या साहब, के पड़ोसी की आग जरूर बुझाना, दूर के लग रही हो तो उसके पहले पड़ोसी की बुझाना, लेकिन अपने वो पड़ोसी में लग रही हो तो अपनी बुझाना, पड़ोसी की नहीं। ठीक है ना? तो अब देखिए, आत्मा में आग लग रही है मिथ्यात्व की, राग द्वेष की। क्यों? और देह में आग लग रही है भूख की, प्यास की, सर्दी की, गर्मी की। बाबूजी, दो ही में आग लग रही है नहीं? बोलो कौन सी पहले बताना? देखो हम तो साहब मानते हैं कि भूख के भजन न होए गोपाला, डालो अपनी कंठी माला। क्यों? ठीक है कि नहीं? हम तो पहले खाएंगे पिएंगे, चाय पानी करेंगे, फिर प्रवचन। ठीक है जी, बंधी भाई। तो तुम्हारा पड़ोसी कौन है, आत्मा के शरीर? यदि तुमने आत्मा को पड़ोसी माना तो इसका मतलब यह है कि शरीर को निज माना है। दोनों में एक साथ आग लगी है और आप कौन सी आग को बुझाने के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो, इससे निर्णय हो जाएगा कि तुमने शरीर को निज माना है या आत्मा को निज माना है। हो गया ना मोहनलाल जी? तो पड़ोसी धर्म निभाना का मतलब क्या है कि पड़ोसी से बैर भी नहीं करना, ज्यादा गहरी दोस्ती भी नहीं करना, बीच की दीवार पक्की रखना, दीवार मत तोड़ देना, घर एक नहीं कर देना, समझे ना? पड़ोसी को पड़ोसी बनाए रखना। अब जरा मैं थोड़ा और गहराई में जाता हूं, जरा समझना, प्रोसेस करना। क्यों जी, पड़ोसी के सिर में दर्द हो, अपने घर में शेरी डोल रखी हो तो देना कि नहीं देना? क्या बात करते हो, 10 पैसे की शेरी डोल नहीं देना? जरूर देना। क्यों? पड़ोसी की आज गैस खत्म हो गई हो तो एक दिन अपने घर में भोजन को बुला लेना कि नहीं बुलाना, कि गैस का सिलेंडर देना कि नहीं देना, कि जरूर देना? समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन पड़ोसी को घर वाला नहीं मान लेना, नहीं तो तेरा घर बिगड़ जाएगा। समझ में आया दुनिया? और पड़ोसी को कैंसर हो गया हो और 10 लाख रुपया खर्च होते हो तो मकान बेच के उसका इलाज कराना है कि नहीं कराना, तो क्या बात करते हो? और अपने को कैंसर हो गया हो तो मानिक भाई, अरे मकान तो फिर बन जाएगा, जिंदा रहेंगे तो। तो पड़ोसी धर्म का अर्थ समझे कि नहीं समझे? कि पड़ोसी की शेरी डोन की गोली तक सेवा करना और चाय पानी तक सेवा करना और एक दिन की रोटी भी खिला देना, इतनी तक करना, लेकिन उसकी बीमारी के लिए मकान नहीं बेचना और उसे वो अपने घर में नहीं बसा लेना। क्यों? अरे पड़ोसी को पड़ोसी मानना, पति नहीं मानना, शत्रु भी नहीं मानना और पति भी नहीं मानना। ख्याल में आया जनिया? अब देख लो, तुम्हारा देह के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार है कि पति जैसा व्यवहार है, और आत्मा के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार है कि पति जैसा व्यवहार है? तो नक्की हो जाएगा कि तुम आत्मा हो कि देह हो। कैसे होगा नक्की? क्या आपको कैंसर हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसी महीने 10 लाख रुपया खर्च होंगे कि ठीक है? कि तुम्हारी आत्मा में मिथ्यात्व का कैंसर हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कि कहां होता है? कि कोई बात नहीं, यहीं जयपुर में ही होता है। कि क्या खर्चा लगता है? कि कुछ खर्चा नहीं है, फ्री में होता है, डॉक्टर तो कुछ पैसा लेता नहीं है। तो बस तो यही व्यवस्था में 25,000 रुपए लगेंगे और सारा ऑपरेशन फ्री में हो जाएगा। बोलू भाई क्यों कराना है? कि ठीक है ठीक है, पंडित जी मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाएंगे। क्यों भैया क्यों? जब तेरे आत्मा के शरीर का कैंसर का उपचार होना था और 10 लाख का खर्चा था, तब तूने नहीं कहा था कि मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाएंगे? तब तो एक मिनट में हां कर दिया था। और इसके लिए मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाएगा तो ठीक ही तो है ना, क्योंकि शरीर तो अपना है और आत्मा तो मुमुक्षु मंडल का है, अपना थोड़ी है। क्या देख ले, तेरा आत्मा के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार है कि नहीं, और शरीर के साथ घर वाले जैसा व्यवहार है कि नहीं, पति जैसा व्यवहार है कि नहीं? भाई यहाँ आचार्य कहते हैं कि अभी तक तूने आत्मा को पड़ोसी और शरीर में अपनत्व किया था, आज हम तेरे से कहते हैं कि दो घड़ी के लिए शरीर को पड़ोसी बना के देख। भगत राम जी क्या मतलब हुआ, कैसे बनाऊ शरीर को पड़ोसी? ऐसे बना कि इसको भूख लगे तो रूखा सूखा शुद्ध सात्विक अहिंसक भोजन दिन में दो बार दे देना, मरने जाए लेकिन मांस मदरा नहीं देना, दिन भर मत भगते रहना, रात में मत चढ़ते रहना। ख्याल में आया ना, इसका नाम है कि पड़ोसी की सहायता करना हो तो समझे ना, पानी पिला देना, चाय पिला देना और रोटी भी खिला देना, समझे ना। लेकिन माल मसाले के लिए जरूरत नहीं है, शराब की बोतल देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बकरा काटने की जरूरत नहीं। हमारे घर में तो नहीं चलता है, लेकिन व्यापारी आते हैं तो उनको होटल में तो खिलाना ही पड़ता है, वादे वाह बहुत अच्छा करना पड़ता है। क्यों सुवनला जी, वह ना भाई रमणी भाई बदर, उनके यहां तो एक ही बिजनेस है, मेन पावर की सप्लाई का। मुंबई में पावर की सप्लाई तो आप समझते होंगे ना, बाहर इंजीनियर डॉक्टरों को भेजते हैं हजारों को हर साल, यही कमीशन का धंधा है पादनी जी। तो हर विदेशों के लोग आते हैं, ये इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन करने के लिए वहां के एक्सपर्ट आते हैं, तो महीना महीना तक रहते हैं एक्सपर्ट लोग, और वो तो होटल में ठहरते हैं, सब अंग्रेज लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, अरब कंट्रीज के आते हैं। लेकिन उन्हें एक दिन भी उनने मांस मदरा नहीं खिलाई, अपने घर में बुलाकर बाजरे का रोटला और गुजराती दाल खिलाते हैं कि हमारे घर में तो हम ये खाते हैं और ये खाने को मिलेगा, बाकी तुम्हारी व्यवस्था तुम करो। व्यवस्था भी नहीं करते, उसका पेमेंट भी नहीं करते, वे बहुत खुश होते हैं, अरे वो तो हम जिंदगी भर खाते हैं, ये हमें कहां मिलता है। और साथ में एक तीर्थंकर भगवान महावीर और नो दाई सेल्फ दो किताबें पकड़ा देते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे जो व्यापारी को फर्क नहीं पड़ता धंधे में? फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। क्यों? कि जब वो हमारा ये देखते हैं कि इस कीमत पर भी ये नहीं करते हैं, तो वे गारंटी से हमसे लेके जाते हैं, चार आदमियों को ज्यादा ले जाते हैं। ये पड़ोसी का मतलब क्या है? ये देह तेरा पड़ोसी है तो इसके लिए ऐसा काम करना कि नरक निगोद में जाना पड़े, इसके लिए रूखा सूखा शुद्ध सात्विक दे देना, इसका नाम है पड़ोसी। शत्रु नहीं मानना, शत्रु को तो यह भी नहीं दिया जाता है, देह को सुखाना नहीं, सुखाने में धर्म नहीं है, जैन धर्म में पड़ोसी मानकर देखना, दो घड़ी को पड़ोसी मां बनाकर देख, सुखाना भी नहीं और इसके पीछे ऐसा काम भी नहीं करना कि आत्मा को नरक निगोद के दुख देखने पड़े, इसका नाम है पड़ोसी बनाना। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। इस भव की मूर्ति शरीर को दो घड़ी के लिए पड़ोसी बना के देख, अनुभव माने बना के देख, तो क्या होगा? दो घड़ी में क्या हो जाएगा? अरे तेरे को क्या पता, कमाल हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? 10-5 करोड़ का फायदा हो जाएगा मुकुंद भाई, कि तेरे को करोड़ ही करोड़ दिखते हैं। जरा ये देख तेरे को क्या होगा। पृथ्वीगत बिल संतम स्वयं समालोक के न तेजसी जगत मूर्त्वा सात एकत्व में हम, के अंदर में तेरे को बिल संतम इस शरीर से भिन्न भगवान आत्मा शोभायमान दिखाई देगा। जब शरीर को पड़ोसी बनाएगा तो क्या होगा? तो उसके अंदर तेरे को ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदावन, भगवान आत्मा शरीर से भिन्न एकदम शोभायमान मुझे दिखाई देगा। अच्छा देगा, देगा क्या? हाँ देगा। तो उससे क्या होगा? दिख जाएगा तो क्या होगा? एन समालोक के एन, जिसको देखने से क्या कहते, मूर्ता साकम एकत्व मोहम जगति तेजस। ये मुर्दे मूर्ता लिखा है, मूर्ता माने ये मूर्ति शरीर, इसके साथ जो एकत्व का मोह है, पर देखो उसमें देखो मूर्ता साकम, साकम माने साथ, एकत्व मोहम एक पने का जो मोह है वो जगति तेजसी तुम शीघ्र ही छोड़ देगा। जगति माने झट्टई, झट्टई जानते ना बुंदेलखंड में झट्टई काय को बोलते हैं, आपके यहां बोलते हैं नहीं? झट 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 बोलते ना, ये काम झट से निपटा लेना, बुंदेलखंड बोलते झट्टई निपटा लेना, ये झटती से झट्टई बना है। आदमी जी तुमने झट्टई झटती टी का पूरा लोप कर दिया है, और बुंदेलखंडियों ने अकेले ता का लोप किया है, ई बचा ली है, झटती झटती झट क्यों आए समझ में? अति शीघ्र क्या होगा? मूर्ता साकम एकत्व मोहम, इस देह के साथ एकत्व का मोह तेजस्वी छूट जाए, खत्म हो जाएगा, छोड़ देगा तू, छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? पागल हो गया है, देह के साथ एकत्र का मोह छूटा तो मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी तेरी अनुभूति हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा, अनंत आनंद हो जाएगा। अब और क्या रह गया बाकी? अब और क्या हो गया? क्यों बोलो मनु कुमार जी, आप ऐसा करो कि उस फलां कंपनी के इतने शेयर खरीद लो, पंडित जी उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हें 10 लाख का फायदा हो जाएगा। पंडित जी उससे क्या हो जाएगा कि जाओ 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 तुम आत्मा रटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। कि 10 लाख मिल जाएंगे उसके बाद भी कहता उससे क्या हो जाएगा? अरे 10 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे, ये तो गलगलिया हो जाना चाहिए था। अब तेरे को गलगलिया नहीं होता है कि 10 लाख मिलने से तो तेरे पर हमारा महामंत्र चलने वाला 10 लाख का फायदा हो जाएगा ये सुनकर जिसको गलगलिया हो जाए, हमारा जादू तो उस पर चलता है। और तुम तेरे 10 लाख मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कि तुम बड़ा आदमी हो जाएगा, तो बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कि तुम बड़ा मकान खरीद लेगा, बड़ा मकान खरीद क्या हो जाएगा? भैया भगवान बताए इसको ले जाओ ना, मेरा समय खराब कर रहा है ना। अब कहते हैं कि तेरे शरीर के साथ के एकत्व का मोह टूट जाएगा और तुझे भगवान आत्मा में एकत्व आ जाएगा, कि उससे क्या हो जाएगा? तू भगवान बन जाएगा फिर बाद में, कि उससे क्या हो जाएगा? आनंद सुखी हो जाएगा, कि उससे क्या हो जाएगा? भैया इसे ले जाओ जल्दी, हमारा समय खराब कर रहा है, इससे हमारा कोई काम। अरे देह से एकत्व का मोह टूट के तेरे आत्मा में एकत्व आ जाएगा तो समझ लेना सब कुछ काम हो गया।